ஓம்கார பிந்து சயுக்தம் நித்யம் தியாயந்தி யோகினம் காமதம் மோஷதம் செய்வோம் காராய நமோ நம. மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்தாரியோ ஜெயின் தர்மோ சு மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் சதானம் சர்வ தர்மானம் ஜெயினம் ஜெயது சாசனம். நம சமைசாராய ஸ்வானுபூத்யா ச காஷதே சித் ஸ்வபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தரச்சிதே எகோமே சாசிதோப்பா ஜான் தர்ஷன் லக்னோ சேஷாமே பாயிரா பாவா சவே சயோக லக்னா மாரோ சுசாசதேக தர்ஷன் நான் லக்ஷன் ஜீவ் சே பாக்கி பதா சயோக லக்ஷன் பாவ முஜதி பாய சே હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન મય કરે પહેન તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે જે જાણતો અરંતને ગુણ દ્રવ્યને પરિય કણે તે જીવ જાણે આત્મને તશુ મોહ પામે લય કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત છે તો તે છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મો દઈ નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ગુ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને વંદી કહું સુત કેવળી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો તુષ્ટાપ નિજને મોક્ષ પંથે જ્યાં અનુભવ તેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિષે ઓમ શ્રી નમસ્તે દેવ્ય નમાશી દેવ્ય નમાશી દેવ્ય. अपनी जो ये शिविर चल रही है उसका पांचवा दिन है, छठवा दिन है, उसमें अपने ही द्रव्यानुयोग की जो चर्चा 320वीं गाथा पर चल रही है और पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी 320वीं गाथा पर चल रहा है। 320वीं गाथा में जो आचार्य भगवान ने बहुत से बिंदु दिए हुए हैं, बहुत सी बातें इसमें पूरी गाथा में भर दी गई है। जिसे जानना देखना उसका आत्मा का स्वरूप है, वो किसको जानता है, जिसको जानता है वहां कौन सी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया कैसे होती है, वो प्रक्रिया में जानना होता है तो वो पर्याय में जानना होता है तो वो पर्याय भी कैसे पृथक है, पर्याय में मोह राग द्वेष होता है तो वो कैसे पृथक है, पर्याय में समय दर्शन ज्ञान चारी प्राणी मोक्ष मार्ग होता है तो वो कथनचित भिन्न कैसे है और उसको भी सर्वथा भिन्न कौन सी अपेक्षा से बोला जाता है, और जीवत्व भव्यत्व अभवत्व पारिणामिक भाव का और चार भाव का स्वरूप सफल निरावरण अखंड एक प्रत्येक प्रतिभासमय जो अपना स्वरूप है नायक भाव उसकी चर्चा की बहुत सी चर्चा इसमें ये गाथा में भरी हुई है। वो निर्जरा वाला प्रकरण भी इसमें है, सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा, ये पूरी जो बात 320वीं गाथा में आई है उसमें आचार्य भगवान को जो सिद्ध करना है कि तेरा स्वभाव मात्र जानना देखना है। कोई भी पर पदार्थ में कोई भी परिणाम में तू फेरफार कर नहीं सकता है, जो परिणाम होने योग्य है वो होते ही रहते हैं, तेरा द्रव्य है वो शाश्वत सुरक्षित है, वो मात्र जानने देखने रूप ही रहता है, उसमें कोई बनाव बनता ही नहीं है, क्योंकि वो सदाय कूटस्थ ध्रुव अविनाशी परमात्मा है और अनादि अनंत उसका एहसान एहसान स्वरूप बच गया है। इसलिए वो स्थिति मेरी है उसको क्या कायम ख्याल में रख के ही जो भी विषय आवे उसको समझना चाहिए। स्वरूप में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, पर्याय में कैसा भी परिवर्तन हो जाए, पर्याय विभाव रूप बहिर्मुख दशा चले या पर्याय स्वभाव की सन्मुख अंतर्मुख दशा हो जाए, फिर भी नायक भाव तो ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा स्वरूप ही रहता है, वो मात्र जानने देखने वाला रहता है। कोई भी पर्याय उत्पाद होवे, कोई भी पर्याय का व्यय हो जाए, पारिणामिक भाव में कुछ नहीं होता है। ऐसा न ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, कुटस्थ परमात्मा, नित्य परमात्मा, वैसा अविनाशी भाव अनादि अनंत भाव उसका ऐसा न ऐसा रहता है। ऐसे परमात्मा का स्वरूप की गाथा में बताया गया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो आज जो प्रवचन चला उसमें कितनी कितनी अपेक्षा से, कितने कितने आधार से बहुत सी बातें आज पूज्य गुरुदेव श्री ने कर दी। कलष्टिका का आधार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा लेके, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव वो कैसे होता है, उसका जो निरूपण है वो पूज्य गुरुदेव श्री के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अपना त्रिकाली द्रव्य है उसमें अनंत गुण है, असंख्यात प्रदेशी है, त्रिकालता उसका काल है और वो वस्तु मात्र निर्विकल्प है। ऐसी वस्तु में ने वस्तु में उसको भेद करके देखना, उसी का नाम पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव हो जाता है। वो ही न वही वस्तु, वस्तु को छोड़े बिना, वस्तु को कायम सामने रख के उसी वस्तु में कोई भेद से उस वस्तु को देखना, उसी का नाम पर द्रव्य है, उसी का नाम पर क्षेत्र है, उसी का नाम पर काल है, उसी का नाम पर भाव है। अभी तो वर्तमान पर्याय प्रकट है उसको परद्रव्य कहे तो पसीना छूट जाता है, सचमुच में तो वो अंदर में है ही नहीं, क्योंकि पर्याय का प्रकट रूप उत्पाद भाव है वो मात्र समयवर्ती है, मात्र समयवर्ती पर्याय है। कभी ऐसा भी लगता है कि ये समयवर्ती समयवर्ती पर्याय बोलने से क्या फर्क पड़ जाता है, पर्याय तो अनादि से चली आती है धारावाहिक, मगर जो भी दोष होता है या तो जो भी गुण प्रकट होता है पर्याय में, दोष के अभाव स्वरूप गुण की प्रकटता, वो भी समयवर्ती है। दूसरे समय वो पर्याय का अस्तित्व नहीं रहता, वो पर्याय अंदर गुणक होकर गुण रूप चली जाती है, गुण रूप हो जाती है, उसका भाव जो है वो समयवर्ती ही रहता है। इसीलिए जितना उत्पाद होता है द्रव्य में से वो एक समय क्रिया करता है, दूसरे समय व्यय होकर पारिणामिक भाव हो जाता है। तो एक समय में पर्याय, एक समय की पर्याय में जिसकी बुद्धि चलती है उसको पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि बोला जाता है। गुरुदेव श्री ने बताया कि आत्मा में इतने गुण है कि अनंत मुख कर दो और एक एक मुख में अनंत जीव कर दो तो भी उसका पार न पड़े, उसकी गिनती न हो सके, ऐसा आत्मा अनंत गुणात्मक परिपूर्ण परमात्मा है। और दोस्त तो बहुत छोटा सा थोड़ा सा है, दोष ज्यादा दोष नहीं है, दोष दो है,
गुण अनंत है। मात्र दो दोष होते हैं जीव के, एक तो उसकी पर्याय में अभिप्राय का दोष चलता है, और अभिप्राय का दोष चला जाता है तो अस्थिरता का दोष है। मात्र दोष दो ही है, और वो दोष को निकालने के लिए समर्थ अनंत गुण अंदर विद्यमान है। अनंत गुणात्मक अपना परमात्मा है, वो अपना स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्व भाव से ऐसा भी खंड न होके अखंड परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसी मेरी वस्तु मात्र है, ऐसे मेरा स्वभाव मात्र है, ऐसा मेरा स्वरूप मात्र है। ऐसी जो परिपूर्ण वस्तु, उसकी महिमा आनी चाहिए जीव को अंदर से। आचार्य भगवान ज्ञानी पुरुष इतना 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 कह के पर्याय की प्रीति छुड़ाने के लिए, पर्याय का पक्ष छुड़ाने के लिए कितनी पर्याय की चर्चा करके पर्याय को निषेध करते हैं। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं समझ लेना कि पर्याय नहीं है। पर्याय भी एक द्रव्य का ही अंश है, प्रमाण का द्रव्य में पर्याय शामिल है, निश्चय का द्रव्य का निर्णय भी अंश रूप पर्याय करती है। पर्याय है मगर पर्याय पर्याय की जगह है, वो द्रव्य में नहीं है, और द्रव्य में नहीं है और पर्याय में भी द्रव्य नहीं है। ऐसी दो सत्ता भिन्न भिन्न है, दो सत्ता कभी एक रूप होती नहीं। दो सत्ता कायम रख के, दोनों सत्ता कायम रहती है। पर्याय की सत्ता भी अनादि अनंत है, ध्रुव की सत्ता भी अनादि अनंत है, मगर मेरी सत्ता कौन सी है? जो मेरी सत्ता अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा, त्रिकाल परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, अखंड परमात्मा, वो सचमुच मेरी सत्ता है। क्योंकि पर्याय में कैसा भी परिणमन होवे, वो सत्ता ऐसी नहीं रहती है। पर्याय विभाव रूप हो जाए या तो पर्याय स्वसन्मुख स्वभाव रूप हो जाए, मगर मेरी जो ध्रुव सत्ता है वो कभी उस रूप परिणमती नहीं। वो ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी अनादि अनंत रहती है। इसलिए वो मेरी कायमी सत्ता है, वो मेरी अभेद सत्ता है, वो मेरी त्रिकाल सत्ता है, वो मेरी एक रूप सत्ता है। उत्पाद होता है उसका नियम से वियोग होता ही है, व्यय होता ही है, और उत्पाद यही भी है ना, वो भी पर्याय का स्वभाव है। और उत्पाद व्यय में जो भाव चलते हैं, उत्पाद अंदर से आता है और अंदर में से उत्पाद होता है, उसमें जो भाव चलते हैं वो भाव है, वो भाव है, वो समयवर्ती है। उत्पाद होता है वो भी कायमी चीज है, उत्पाद होता ही रहता है प्रत्येक समय प्रत्येक समय प्रत्येक समय, वो उत्पाद पर्याय का स्वभाव है। और एक समय क्रिया चलती है वो पर्याय का विशेष भाव है, और दूसरे समय व्यय होकर पारिणामिक भाव हो जाता है, वो पर्याय का व्यय रूप भाव है। तो उत्पाद व्यय जो है वो भी पर्याय का स्वभाव है। उत्पाद की नई 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 उपरक्ति होती है, वो उपरक्ति है, वो समयवर्ती चीज है। उत्पाद भी अनादि अनंत है, व्यय भी अनादि अनंत है, ध्रुव भी अनादि अनंत है, मगर उत्पाद में जो परिणमन चलता है, राग रूप वितरागता रूप, मोहराग द्वेष रूप या समय दर्शन नान चारित्र मोक्ष बालू, वो मात्र समयवर्ती रहता है। वो समयवर्ती रहने से उत्पाद को समयवर्ती बोला जाता है, व्यय को समयवर्ती बोला जाता है, ध्रुव को अनादि अनंत बोला जाता है। उत्पाद जब होता है तब ही उसी में पर लक्ष्य से राग या स्व लक्ष्य से वितरागता आती है। उत्पाद राग लेके नहीं आता अंदर से, उत्पाद तो उत्पाद है, वो स्वभाव है, अंश स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव है, वो अंश है। वो अंदर में राग नहीं है कि अंदर में राग, अंदर से राग निकलता है, ऐसा नहीं है। उत्पाद होते ही सन्मुखता उसकी पर तरफ है, वो स्वयं उसी समय सन्मुखता होती है, समय देर नहीं है उसमें। वो सन्मुखता पर सन्मुख होते ही लेके उठता है, तो उसी समय वो जो क्रिया चली उसमें राधा जी भाव चलते हैं। अभी वो दूसरे समय व्यय होकर पारिणामिक भाव रूप पर्याय हो जाती है, तो राग अंदर नहीं जाता है, अंदर व्यय जाता है। तो राग क्यों अंदर नहीं जाता है? क्योंकि राग पर लक्ष्य होता है, अंदर व्यय जाता है तब पर लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए राग राग में रह जाता है और व्यय पर्याय का अंदर चला जाता है। उसको बोला जाता है पर्याय की एक समय की अवस्था का परिणमन रूप भाव, और अंदर चला जाता है वो व्यय गुण रूप हो जाता है, फिर वहां कोई राग रूप भाव नहीं है, वहां कोई मिथ्यात्व नहीं है, वहां कोई अज्ञान नहीं है। तो ये एक समय का काम है, ये सब सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष मार्ग भी समयवर्ती होता है। नया 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 परिणमन प्रत्येक समय चलता है। रागादि भाव भी समयवर्ती होता है, राग को मेरा मानना ऐसा मिथ्यात्व भी समयवर्ती होता है। वो दोनों को मोह राग द्वेष को मिला के अज्ञान बोला जाता है, वो भी समयवर्ती है। तो समयवर्ती भाव जहां से निकलता है उसमें वो कोई भाव छिपा हुआ नहीं है अंदर में। प्रत्येक पर्याय का उत्पाद ध्रुव में से होता है और प्रत्येक पर्याय का उत्पाद ध्रुव में से होने से मगर उसका परिणमन होता है, वो स्वतंत्र होता है। वो परिणमन में जो क्रिया बचती है वो स्वतंत्र सत्कारक से होती है, वो पर्याय का सत्कारक है। ध्रुव का सत्कारक अंदर शक्ति रूप है, वो शक्ति रूप सत्कारक में कोई विभाव नहीं है। और जब पर्याय में पर्याय का सत्कारक प्रकट होता है तो ध्रुव सत्कारक के साथ सचमुच उसका कोई संबंध नहीं रहता। इतनी भिन्नता समझनी पड़ेगी भैया, द्रव्य पर्याय की ऐसी भिन्नता है, ऐसी भिन्नता होने से ही द्रव्य ऐसा न ऐसा शुद्ध रूप बच गया है। अगर ऐसी भिन्नता नहीं होती, पर्याय और द्रव्य एक रूप मान लो, कथनचित एक मान लो, तो भी पर्याय में अशुद्धता होने पर द्रव्य अशुद्ध दिखने लगेगा। तो द्रव्य तो अशुद्ध होता नहीं कभी, एक समय के लिए भी द्रव्य अशुद्ध हो जाए तो किसके आश्रय से शुद्धता प्रकट होगी? तो द्रव्य का जो भाव है, द्रव्य का जो स्वरूप है, द्रव्य का जो अनादि अनंत पना है, द्रव्य का जो शाश्वत कुटस्थ एक रूप ध्रुव पना जो है, वो कोई भी समय ऐसा नैसा रहता है। इसीलिए सम्यक दर्शन होने में एक समय लगता है, भले धारावाही कितना भी अज्ञान चल गया हो, मगर जहां उसका अहम चला गया, मैं द्रव्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं एक रूप हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत अविनाशी परिपूर्ण पदार्थ हूं, ऐसा जहां अहम उसका चला गया उधर, उसी समय मोक्ष मार्ग की पर्याय की प्रगटता होती है। क्योंकि ये शुद्ध बच गया है, तो कुछ हुआ नहीं है, मेरी सत्ता ऐसी न ऐसी निबिड रह गई है, ऐसी न ऐसी सत्ता ध्रुव रूप बच गई है। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि ध्रुव की सत्ता है, ध्रुव की सत्ता, वो ध्रुव की सत्ता कभी पर्याय का कारण भी नहीं बनती, पर्याय का कार्य भी नहीं बनती, वो अकारण सत्ता है, अकर्ता सत्ता है, अकारक अवेदक सत्ता है, अनादि अनंत ऐसी ने ऐसी सत्ता बच गई है। वो अकारण भी बोलते हैं उसको, और मोक्ष मार्ग और मोक्ष का प्रकरण नियम सार में चले तो उसने कारण परमात्मा की धुन बजाई है, उसने धुन बजाई उसने कारण परमात्मा की, पद्म प्रभु बलधारी देव ने, कि तेरा कारण कहीं बाहर में नहीं है, तू बाहर में ढूंढता है तेरा कारण सम्यक दर्शन का, मोक्ष मार्ग का, वो कारण तुझे कहीं बाहर में नहीं मिलेगा। तेरा प्रगट शुद्ध रूप कार्य होने का कारण भी तेरे वर्तमान परिपूर्ण परमात्मा में पड़ा है। और यहां ऐसा कहते हैं कि त्रिकाली द्रव्य कभी कारण ही बनता नहीं है, तो यहां त्रिकाली द्रव्य से चर्चा है, अखंड भाव से चर्चा है, ध्रुव सत्ता से चर्चा है। वो क्यों कारण नहीं बनता है? क्योंकि जो मोक्ष का कारण बने वो पूर्व पर्याय में बंध का कारण बन जाता है, इसलिए वो कारण नहीं है परमात्मा, वो अकारण परमात्मा है, ऐसा नहीं ऐसा परमात्मा है। वो किसी का कारण नहीं बनता। सम्यक दर्शन का कारण मानोगे तो मिथ्या दर्शन का कारण मानना पड़ेगा, इसलिए वो कारण नहीं है, वो अकारण परमात्मा है। अगर वो कारण होता तो अनादि से है, क्यों कार्य नहीं आता है? कि वो अकारण परमात्मा है, अभेद परमात्मा है, एक रूप परमात्मा है, शुद्ध परमात्मा है, अकर्ता स्वभावी आत्मा है। वो मोक्ष मार्ग मोक्ष का परिणाम को भी करता नहीं है, क्योंकि वो परिणाम की स्वतंत्र व्यवस्था है, उत्पाद होने की, उत्पाद के समय उसमें क्रिया होने की और क्रिया को छोड़ के फिर व्यय होने की, उसकी स्वतंत्र क्रिया है वो उसकी, उसपे ध्रुव के साथ कुछ संबंध नहीं है उसको। गुण पर्याय व द्रव्यम बोला जाता है, उत्पाद भी द्रव्युक्तम सत बोला जाता है, द्रव्य बिना पर्याय नहीं है, पर्याय बिना द्रव्य नहीं है, ये सब चर्चा पर से पृथक करने के लिए प्रमाण की व्यवस्था में जीव आ जाए इसलिए होती है। मगर प्रमाण का द्रव्य में आके अपने को प्रमाण से ही सोचना कि प्रमाण में भेदनाम कैसे करें अपन, मेरी सत्ता में देव वाणी मन तो है ही नहीं, वो तो मेरी पर्याय में भी नहीं है, वो तो मेरे से पृथक ही है। तो एक द्रव्य सत्ता है और एक पर्याय सत्ता है, बस उसी में ही अपने को काम करना है, उसी में ही शुद्धता कैसे प्रकट हो जाए, अशुद्धता का नाश कैसे हो जाए, यही अपने को सोचना है। तो दो सत्ता में मेरी सत्ता कहां है, मेरा स्वरूप कहां है, वो अपने को खोजना है बस। और वो पूज्य गुरुदेव श्री ने 320 गाथा के माध्यम से इतना स्पष्ट किया है, इतना स्पष्ट किया है कि एक के बाद एक के बाद एक प्रवचन आएंगे ना तो और नए भाव उसमें आते ही रहेंगे। इसमें ऐसा अद्भुत प्रवचन, अलौकिक प्रवचन ये 320 गाथा का है, क्योंकि 320 गाथा ही अपने स्वभाव को बताती है, अपने चैतन्य तत्व को बताती है, अपने शुद्ध तत्व को बताती है। समयवर्ती पर्याय में जो होता है वो उसकी योग्यता से होता है, अंदर में जो भी गुण में पड़ा है वो गुण में शक्ति रूप योग्यता भी है, और एक जो भूतकाल की पर्याय हो गई उसकी भी योग्यता अंदर में पड़ी है। भूतकाल की योग्यता रूप पारिणामिक भाव और शक्ति रूप योग्यता रूप पारिणामिक भाव, वो एक रूप भाव अंदर में त्रिकाल अखंड पड़ा है, और वर्तमान पर्याय बाहर लेके उसका निर्णय करती है कि मैं शुद्ध परमात्मा हूं। ऐसा अंदर अभेद स्वभाव है। पर्याय प्रकट होती है तब वो पर द्रव्य है, पर भाव है, ही है। अंदर में पर्याय का गुण में जो तत्व पड़ा है वो पर्याय का जैसा अंश प्रकट होने वाला है ऐसा ही तत्व प्रत्येक गुण में अनादि काल से अनंत काल तक की जितनी पर्याय अनादि काल से आज तक प्रकट हो गई वो व्यय रूप योग्यता रूप पड़ा है अंदर गुण में, और प्रकट होने वाली है वो शक्ति रूप योग्यता रूप अंदर में पड़ा है, और व्यक्त पर्याय है वो बाहर रह के अपना द्रव्य स्वभाव का निर्णय करने के लिए बाहर रही है। वो इसीलिए बाहर है कि उसको निर्णय करना है अपनी सत्ता का, अपना ग्राहक भाव का, अपना चैतन्य तत्व का, अपना एक रूप भाव का। वो पर्याय भी पूर्व समय में अंदर थी पारिणामिक भाव में, वर्तमान में प्रकट हुई है, और प्रकट होने से वो ऐसा ही देखती है कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं अखंड हूं, मैं ग्राहक हूं, मैं शुद्ध हूं। क्योंकि भूतकाल की तो पर्याय है नहीं, भविष्य की उसको मालूम नहीं, वो शक्ति रूप पड़ा है, वर्तमान पर्याय में निर्णय करना है उसको, ये काम निर्णय का है, इसमें स्वभाव का निर्णय, अपने से अपना निर्णय, अपना स्वभाव जैसा है ऐसा निर्णय ज्ञान आना चाहिए कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं परिपूर्ण नायक परमात्मा हूं, मेरी अखंड सत्ता ध्रुव सत्ता है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं अभी तक और ना तो कुछ होने वाला है। पर्याय पलटती है, समयवर्ती पलटती है, आती है जाती है, वो सब होता है। मैं तो मात्र जाननहार परमात्मा हूं, मैं तो देखनहार देखने वाला हूं, जानने वाला हूं, ऐसा मेरा परिपूर्ण स्वभाव है, ऐसी मेरी विनायक देव की महिमा है, ऐसा मेरा सत्ता सत्व है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरी परिपूर्णता है। बस उस स्वभाव की महिमा अपने को कैसे आए, उस स्वभाव का, उसकी परिपूर्णता, उसकी अंदर की गरिमा कैसे अपने को ख्याल में आवे अपने ज्ञान में, ये प्रकरण इसमें चल रहा है। स्वभाव को स्वभाव से तू देखने का प्रयत्न कर। प्रवचन सार की 200 गाथा में आया कि मैं तो स्वभाव से ही नायक हूं, मैं तो स्वभाव से ही नायक हूं। और 192 गाथा में आया, अस्थि से ही बात आई उसमें कि मैं ज्ञानात्मक दर्शन भूत अतीन्द्रिय महापदार्थ अचल और निरालंबी हूं। ऐसा हूं मैं ज्ञानात्मक दर्शन भूत अतीन्द्रिय महापदार्थ अचल और निरालंबी मैं परमात्मा हूं, और मैं स्वभाव से ही नायक हूं। मेरी वस्तु चैतन्य वस्तु है, ध्रुव वस्तु है, अखंड वस्तु है, ये सब कहने वाली पर्याय है, ये निर्णय करने वाली पर्याय है। पर्याय भी है मगर पर्याय इतना ही कार्य करने के लिए है, अपना निर्णय करने के लिए वो बाहर देती है, और कुछ करने के लिए वो बाहर नहीं देती है, और इतना ही कर्तव्य है वो पर्याय का, उसको ही पर्याय बोली जाती है। आज गुरुदेव ने ऐसा बोला, आप सब लोग ने सुना होगा कि पर्याय किसको बोलते हैं, कि अपने स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अखंड परिपूर्ण है, ऐसा जाने उसको पर्याय बोला जाता है, ऐसा गुरुदेव ने आज फरमाया। अभी जो पर्याय में अपना परमात्मा विराजमान नहीं होवे उसको अपन पर्याय भी कैसे बोल सकते हैं, कि जो पुत्र अपने पिता का नाम ही नहीं लेवे, उसके सामने देखे ही नहीं, उसको पर्याय कैसे कह सकते हैं अपन। पर्याय ही उसका नाम है कि जो ऐसे जयघोष करती है, पुकार करती है, घोषणा करती है कि मैं शुद्ध परमात्मा चैतन्य द्रव्य हूं, मैं अखंड परिपूर्ण परमात्मा हूं। समयवर्ती पर्याय त्रिकालवर्ती की घोषणा करती है कि मैं ऐसा परिपूर्ण हूं, ऐसा ध्रुव हूं। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, अनित्य नित्य का निर्णय करते हैं, अनित्य नित्य का निर्णय करते हैं, प्राप्त की प्राप्ति है, जो कुएं में है वो अवेड़े में आता है, ये सब बातें जो है ना उसमें बहुत मर्म भरा रहता है, कि खाली ये बात कहने वाली नहीं होती है, इसमें द्रव्य पर्याय का स्वरूप सब में पूज्य गुरुदेव श्री बताना चाहते हैं कि जो अंदर में है वही बाहर आता है, जो अंदर में है वो बाहर आवे उसी को ही मेरी पर्याय बोला जाता है, जो अंदर में नहीं है वो पर्याय में हो जाए, वो राग द्वेष वो मेरी पर्याय नहीं है। मेरी सत्ता में जो है, मेरा स्वभाव में जो है, परिणमन में तो ऐसा ही आना चाहिए, अगर ऐसा परिणमन में नहीं आवे तो वो मेरा परिणमन नहीं है, वो जिसके लक्ष्य से होता है उसका परिणमन है, वो परिणमन एकांत से मुद्गल का है। 39 करस में आया, एकस्य पुद्गलस्य ही निर्वाणम, ये सब पुद्गल का चित्रावण है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा परिणमन भी होवे तो मेरे जैसा होवे, उसी को ही मेरी पर्याय बोली जाती है, उसके अलावा कोई पर्याय मेरी है नहीं। इसलिए उस पर्याय को कथनचित बिन बोला जाता है। कथनचित बिन क्यों बोला इधर, कथनचित अभिन क्यों नहीं बोला? तो सचमुच में तो वो कथनचित अभिन है। अनुभूति के काल में तो पर्याय कथनचित अभिन होती है, तब ही तो अनुभूति बोली जाती है। कथनचित भिन्न बताया देवसेन आचार्य ने नई कथा में, ऐसी मोक्ष मार्ग की पर्याय को कथनचित अभिन बताया। भाई साहब को सब पता होगा नई का, और यहां बताया कथनचित भिन्न। यहां दृष्टि का विषय चित करना है, यहां भावना भाव की है वो भाव चित करना है। इसलिए वो कोई एक अपेक्षा से, कोई अपेक्षा से भिन्न है वो। वहां मोक्ष मार्ग जहां सिद्ध करना हो, मोक्ष जहां सिद्ध करना हो, वहां उसको अभिन्न बोला जाता है। और यहां दृष्टि का विषय सिद्ध करना है, परिपूर्ण परमात्मा सिद्ध करना है, इसलिए उसको भिन्न बोला जाता है। कथनचित भिन्न बोलो, भिन्न बोलो। कथनचित भिन्न माने क्या? कोई एक अपेक्षा से भिन्न है तो वो तो परिणमन तो भिन्न ही है, अपरिणामी से है। तो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ वो द्रव्य जैसा है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग में प्रकटता हुई, इसलिए उसने कथन की शब्द लगाया है। ऐसा ध्रुव है, ऐसा ही परिणाम आया, तो उसमें कथनचित भिन्न का सुर आया है उसमें। ऐसी ये बहुत अच्छी गाथा में अच्छी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा आ रही है। ये अपन ने गाथा में तो पहला पैराग्राफ ये भी शुरू किया है, ये जो प्रवचन चलता है तो उसका ही रेफरेंस से अपन बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये गाथा तो अपने को क्या है, अपने को तो त्रिकाली द्रव्य को घूंट के पर्याय का स्वरूप समझना है। त्रिकाली द्रव्य अपना है, ऐसी अपनी पहचान बराबर अपने को पर्याय में हो जाए, अपना कर्तव्य तो सबका यही है, उसी का नाम तो गाथा पूरी हो जाती है। गाथा पूरी करने के लिए प्रवचन नहीं होते, स्वाध्याय नहीं होता है, अपना स्वरूप समझने के लिए स्वाध्याय होता है, अपनी पहचान के लिए ये सब चर्चाएं चलती है। तो प्रथम में प्रथम आत्मा को शांत, उसमें आया 17-18 गाथा में। प्रथम में प्रथम क्या करना? तो प्रथम में प्रथम आत्मा को जान और कुछ मत कर, सबसे पहले ये कार्य कर, प्रथम में प्रथम आत्मा को जान, बाकी का कार्य तो स्वयं हो ही जाने वाला है। तू आत्मा में आत्मा को जान लेगा तो तुझे फिर पर्याय कैसी होती है, कैसे फिराना, कैसे उपयोग को अंदर ले जाना, उपयोग क्यों बाहर डाला जा रहा है, ये विकल्प ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि तेरी दृष्टि ही चिपक जाएगी। वो दृष्टि चिपक जाएगी फिर वो दृष्टि निकलेगी ही नहीं। उधर गुरुदेव ने इससे दृष्टांत मेरे ख्याल से आ गया होगा, वो चंदन गो का दृष्टांत देते हैं गुरुदेव, आ गया होगा प्रवचन में, मैं तो नहीं था तब। बहुत अच्छा दृष्टांत है वो, जैसे एक नानी की दृष्टि द्रव्य पर चली जाती है, उस पर चोट जाती है, बाद में कितने भी उपसर्ग आ जाए, कितने भी परीक्षा आ जाए, वो दृष्टि को आंच ही नहीं आती है। वो दृष्टि में दृष्टा बैठा हो, बैठा कौन दृष्टि और कौन दृष्टा, ऐसा विकल्प की ऐसा भेद कुछ वहां रहता ही नहीं है। मैं एक विनायक परिपूर्ण परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, यही वहां रहता है। वो दृष्टांत दिया ना कि जो चंदन गो होती है उसको वो चोर को ऊपर से चोरी करना हो तो दीवार पे ऐसे लगा देते हैं उसको, फिर उसके सहारे ऊपर चढ़ते हैं, तो वो ऐसी चिपकी हुई है उधर कि कितने भी ऊपर नीचे लोग हो जाए वो उसको छोड़ती नहीं है। ऐसी ये दृष्टि की कमाल है, वो नजर द्रव्य पर पड़ी है वो नजर छूटती ही नहीं, वो नजर कभी नहीं छूटती, कितना भी परीक्षा आ जाए, कितना भी उपयोग भी चला जाए बाहर, दृष्टि में कुछ खामी नहीं आती है, उसी को दृष्टि बोला जाता है, उसी को चैतन्य परमात्मा देखा ऐसा बोला जाता है। श्रद्धा है ना, श्रद्धा उस श्रद्धा का सूर ऐसा होता है कि जीव को परिणाम है ही नहीं। श्रद्धा का सूर कैसा होता है कि जीव अपरिणामी है, जीव ध्रुव शाश्वत है, जीव अखंड है, जीव एक रूप है, ये श्रद्धा का सूर है। श्रद्धा परिणाम को स्वीकार ही नहीं करती है, उसी को श्रद्धा बोला जाता है। जीव अपरिणामी है, ध्रुव है, शाश्वत है, चैतन्य है, एक रूप है, नित्य है, ऐसा ही श्रद्धा का सुर निकलता है, उसको श्रद्धा बोली जाती है। अभी साथ में ज्ञान भी है, ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। श्रद्धा तो स्वीकार ही नहीं करती मगर ज्ञान है साथ में। ज्ञान बोलता है परिणाम है, परिणाम की स्थिति है, परिणाम उत्पादे वाला है, पर्याय में भी मलिनता अभी है, ऐसा ज्ञान बोलता है। और ज्ञान मलिनता को भी सिद्ध करता है और अभेद ग्राह्य शुद्ध निश्चय से बोलता है कि मलिनता है ही नहीं परिणाम में। पानी जो है ना, पानी, अभी पानी जल जो भी बोलो समझ लो उसमें मलिनता हो गई, कादव की मलिनता उसमें हो गई संयोग से, तो वो व्यवहार नहीं क्या बोलता है कि वो पानी मलिन हो गया है। और निश्चय ने ऐसा बोलता है कि ये मलिनता पानी की नहीं है, ये तो कादव की मलिनता है। मगर वो ज्ञान है ना, वो परिणाम को बराबर तपास के रखता है, परिणाम का विवेक भी करता है, परिणाम की अस्ति का स्वीकार भी करता है, परिणाम में मलिनता चलती है उसको व्यवहार से जानता भी है, और उसी समय वो मलिनता वो पानी के स्वभाव की नहीं है, जिसके संग से मलिनता हुई है उसकी है, ऐसा निश्चय से भी वो जानता है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। श्रद्धा तो परिणाम है ही नहीं ऐसा ही कहती है, श्रद्धा परिणाम का स्वीकार ही नहीं करती है, ज्ञान परिणाम का स्वीकार करता है। वो ज्ञान में दो नहीं पड़ती है, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, और आखिर में व्यवहार नहीं हार जाती है और निश्चय नहीं जीत जाती है। श्रद्धा को तो हार जीत है ही नहीं, वो तो जीती हुई है। वो तो ऐसा कहते मैं परिपूर्ण ही हूं, मेरे में परिणाम ही नहीं है। जीव को परिणाम होता ही नहीं, परिणाम वाला जीव मैंने कभी देखा ही नहीं। वो विवेक करने वाला ज्ञान श्रद्धा को विषय देता है और वो श्रद्धा में ये हुए से परिणाम जाती है। ऐसा श्रद्धा और ज्ञान का सुमेल चढ़ता है। एकांत कुछ नहीं है और एकांत के बिना अनेकांत भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। इसलिए श्रद्धा में अपने स्वभाव का बल आना चाहिए, ऐसी मजबूती होनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए श्रद्धा की कि कुछ भी हो जाए मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं तो विनायक चैतन्य ध्रुव सत्ता है मेरी, ऐसा न ऐसा परिपूर्ण मैं बच गया हूं, मैं अभेद किला हूं, मेरे में प्रवेश ही नहीं होता किसी का, ऐसी मेरी अनादि अनंत सत्ता है, अनादि अनंत मेरा ध्रुवपना है, मेरी एक रूप सत्ता है, ऐसी सत्ता श्रद्धा को स्वीकार करती है, उसी को ही श्रद्धा बोली जाती है। ज्ञान में सब चलता है, निश्चय व्यवहार वो सब ज्ञान पूरा विवेक करके सब निर्णय कर लेता है और निर्णय करता है और श्रद्धा को विषय मिलता है, तो श्रद्धा में यही हूं ऐसे ही चलती है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान के आधार से श्रद्धा चलती है, श्रद्धा स्वयं चलती है, ज्ञान भी स्वयं चलता है, दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, दोनों अपने में अपने से है, वो दोनों पर्यायों के बीच में भी निमित्त निमित्तिक बोला जाता है, मगर है सब अपने से, उपादान से, किसी को किसी का कुछ लेना देना है नहीं, ज्ञान में निर्णय किया इसलिए श्रद्धा में सम्यकत्व हुआ, कि श्रद्धा में सम्यकत्व हुआ इसलिए ज्ञान में सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ज्ञान अपने से ही सम्यक ज्ञान रूप परिणमता है, श्रद्धा अपने से ही सम्यक श्रद्धा रूप परिणमता है। दोनों का विषय एक ही है, परिपूर्ण परमात्मा। ज्ञान की द्विरूपता में जानना सब होता है द्रव्य पर्याय का, मगर उसका लक्ष्य उसका विषय वो एक ही रहता है, तभी उसको भी ज्ञान तब बोला जाता है। तब तक तो वो मिथ्या ज्ञान है, उससे पहले उसको ज्ञान ही नहीं बोला जाता। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसी 320 गाथा का प्रकरण है। ये 320 गाथा, इसमें बाद में जो भी बात है सका मकाम निर्जरा वाली, सविता कविता निर्जरा वाली, वो बातें अपन ने सुनी भी है पूज्य गुरुदेव श्री से, और कल मैंने भी ले लिया था। तो ऐसे ये अपना पहला पैराग्राफ इसमें पूरा होता है, बाकी उसमें दूसरा पैराग्राफ का प्रकरण अभी अपन दोपहर को चालू करेंगे। ऐसी श्रद्धा का बल सब जीव को आके सब भवी जीव मोक्ष मार्ग में परिणमन करे, ऐसी मंगल भावना।